श्रीमद् भागवत तीसरा स्कंद 15वां अध्याय ईश्वर के साम्राज्य का वर्णन। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वम् सत्वेन संप्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुतापविदितैर्दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागाः अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हम जानते हैं कि आप पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, जो अपने दिव्य रूप को अकलुषित सतोगुण में प्रकट करते हैं। आपका यह दिव्य शाश्वत रूप आपकी कृपा से ही अविचल भक्ति के द्वारा उन मुनियों द्वारा समझा जाता है, जिनके हृदय भक्तिमयी विधि से शुद्ध किए जा चुके हैं। तात्पर्य। परब्रह्म को तीन रूपों में निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान के रूपों में समझा जा सकता है। यहां इसे स्वीकार किया गया है कि परब्रह्म को समझने में भगवान अंतिम शब्द हैं। यद्यपि चारों कुमारों को उनके महान विद्वान पिता ब्रह्मा ने शिक्षा दी थी, तथापि वे परब्रह्म को यथार्थ रूप में समझ नहीं पाए थे। वे परब्रह्म को तभी समझ पाए जब उन्होंने अपनी आंखों से भगवान को साक्षात देखा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भगवान को देखता या समझ लेता है तो परब्रह्म के अन्य दो रूप निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा रूप भी स्वतः समझ में आ जाते हैं। इसीलिए कुमारगण पुष्टि करते हैं आप परब्रह्म हैं। निर्विशेषवादी यह तर्क कर सकता है कि चूंकि भगवान इतने सुंदर ढंग से सुसंचित थे, अतएव वे परब्रह्म नहीं थे। किंतु यहां पर इस बात की पुष्टि की गई है कि परम पद की समस्त विविधता शुद्ध सत्व से निर्मित है। भौतिक जगत में कोई भी गुण सतो, रजो या तमो कलुषित रहता है। यहां तक कि भौतिक जगत में सतगुण भी रजो तथा तमो गुणों से के स्पर्श से मुक्त नहीं है, लेकिन दिव्य जगत में एकमात्र सतोगुण विद्यमान रहता है, जिसमें रजो या तमोगुण का लेश भी नहीं सकता। इसीलिए भगवान का स्वरूप तथा उनकी विविध लीलाएं एवं साज सामग्री सारे के सारे शुद्ध सत्व गुण हैं। सतोगुण में ऐसी विविधता भगवान द्वारा भक्त की तुष्टि हेतु सतत प्रकट की जाती है। भक्त परब्रह्म को शून्यता या निर्विशेषता में नहीं देखना चाहता। एक अर्थ में परम दिव्य विविधता केवल भक्तों के निमित्त होती है, अन्यों के लिए नहीं, क्योंकि दिव्य विविधता का यह स्पष्ट रूप एकमात्र भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है, मानसिक चिंतन या आरोही विधि से नहीं। कहा जाता है कि जब मनुष्य को भगवान की किंचित मात्र भी कृपा प्राप्त होती है तो वह भगवान को समझ सकता है, अन्यथा उनकी कृपा के बिना मनुष्य हजारों वर्षों तक चिंतन करते रहने पर भी यह नहीं समझ सकेगा कि वस्तुतः परब्रह्म क्या है। यह कृपा भक्त द्वारा तब अनुभव की जाती है तब वह कल्मश से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जब सारा कल्मश अनमूलित हो जाता है और भक्त भौतिक आकर्षण से पूर्णतया विरक्त हो जाता है तभी वह भगवान की इस कृपा को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत पढ़ने से बहुत आनंद आता है। इसमें भगवान के धाम का वर्णन है और ये भौतिक सृष्टि का वर्णन भी आता है। श्रीमद् भागवत में हमें ऐसा ज्ञान मिलता है जिसको प्राप्त करने से और अन्य ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्रम से शनै शनै अलग अलग विषयों का विस्तारित रूप में वर्णन होता है। कई बार हमें ये लगता है कि यहां कुछ कनेक्शन नहीं लग रहा है कि एक अध्याय में एक विषय के बारे में चर्चा हो रही है फिर दूसरे अध्याय में किसी दूसरे ही विषय के बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत को गौर से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वास्तव में इसमें बहुत सुंदर ढंग से सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को एक ऐसी यात्रा में वो ले गए हैं जिसमें आगे चलते चलते आनंद और भी बढ़ते रहता है और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल परीक्षित महाराज के प्रश्नों के हिसाब से कथा आगे बढ़ती रहती है। अभी हम तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में हैं। इस अध्याय में विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं और जैसे जैसे विदुर प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि उनको वैसे वैसे कथा में आगे ले चलते हैं। पहले विदुर जी ने जानना चाहा कि यह सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है तो मैत्रेय मुनि ने बड़े विस्तार में वर्णन किया किस प्रकार से महाविष्णु से प्राकृत सृष्टि की रचना होती है का निर्माण होता है और फिर ब्रह्मा जी से वैकृत सृष्टि इसका निर्माण कैसे होता है। जब ब्रह्मा जी के सृष्टि का वर्णन चल रहा था तो सुखदेव मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से बताया कि उनके इतने सारे पुत्र हुए जिनमें से सबसे वरिष्ठ थे चार कुमार जो अब इस श्लोक में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनके बाद में आए शिवजी अत्रि मुनि पुलह पुलस्त्य ऋषि अंगिरा मुनि भृगु मुनि इत्यादि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। उनके बाद में भी जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी सारे सृष्टि में संतान नहीं हुए हैं प्रजा अभी तक इतनी बढ़ी नहीं है तो उन्होंने स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को जन्म दिया और फिर स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि हम आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं आतुर हैं लेकिन समस्या हमारे सामने एक ही है कि पृथ्वी लोक जो है वो अब गर्भोदक सागर में नीचे पड़ चुकी है इसलिए इसको आप कृपा करके उठा दें। तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ये कैसे किया जाए। सोचते सोचते ही अचानक ब्रह्मा जी की आंखों के सामने उनके ही नसिकों से एक अद्भुत प्राणी बाहर आए शुकर के रूप में, और जैसे वो बाहर आए बड़े होकर होते गए और सबने समझ लिया कि ये भगवान विष्णु हैं जिन्होंने वराह का अवतार लिया है। और वराह देव ने गर्भोदक सागर से पृथ्वी को उठाया और वहां पर हिरण्याक्ष राक्षस का वध किया। इस समय विदुर ने पूछा कि भगवान ने ऐसा रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध क्यों किया, तो इसके उत्तर में मैत्रेय मुनि बताने लगे कि इसका उत्तर मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। जब बहुत साल पहले देवताओं ने उनको यही प्रश्न किया था और उस सभा में मैं भी उपस्थित था, तो मैंने ये ब्रह्मा जी के मुख से सुना उस सभा में। और फिर मैत्रेय मुनि ने कहा कि दिति और कश्यप के संतान ये दो हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से दिति के गर्भ में दो बच्चे हुए जिनका गर्भ में रहने से सारे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब विदुर पूछने लगे कि ऐसा क्यों हुआ, और उस समय मैत्रेय मुनि ने कहा कि देवताओं ने भी यही प्रश्न ब्रह्मा जी को किया था और ब्रह्मा जी हंसने लगे, और ब्रह्मा जी ने फिर चार कुमारों की बात शुरू की और बताया कि चार कुमार कैसे उनके वरिष्ठ पुत्र थे, ब्रह्मचारी पुत्र, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और भगवान के संदेश का प्रचार करने के लिए इधर उधर सारे ब्रह्मांड भर में वो घूमते फिरते हैं। और एक बार ऐसा हुआ कि वो वैकुंठ तक भी पहुंच गए, और इस संदर्भ में मैत्रेय मुनि ने सारे वैकुंठ धाम का वर्णन किया कि वहां पे क्या होता है, वहां के निवासी कैसे होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं, और फिर बताया कि किस प्रकार से चार कुमार छोटे बालक थे लेकिन बड़े ऋषि थे, वो वैकुंठ के छह द्वार पार करके सातवें द्वार तक पहुंचे। उस समय वहां के दो द्वारपाल जय और विजय ने उनको रोका, चार कुमारों को क्रोध आया, उन्होंने उनको श्राप दिया कि उनका जन्म असुर योनि में होगा पृथ्वीलोक के ऊपर। और जैसे ही भगवान श्री हरि को पता चला कि क्या घटना हुई है, वो तुरंत उस द्वार पे आए, और जैसे ही चार कुमारों ने उनका दर्शन किया तो उनको प्रणाम किया, उनके हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति बहुत ही तीव्र आकर्षण उत्पन्न हो गया और वो बहुत ही सुंदर स्तुतियां अर्पण करने लगे भगवान के प्रति। और ये श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये चार कुमारों की स्तुति है, प्रार्थना है भगवान के प्रति। तो देखिए पिछले दो अध्यायों में ही हम देखेंगे कैसे क्रम से कथा चल रही है आगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, दूसरे से तीसरे तक, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से कथा भागवत की चलती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगह में कैसे भी किसी भी ढंग से कथा अलग अलग विषयों का वर्णन है। तो ये चार कुमार जो हैं वास्तव में ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब कि वो परम सत्य के निराकार में, निराकार निर्गुण ब्रह्म अवस्था में वो ज्यादा रुचि रखते थे, उसकी उपासना करते थे। उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से भगवान श्री हरि या नारायण के दिव्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किया था, लेकिन उसका साक्षात्कार नहीं हुआ था, इसलिए वो अभी तक ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी और मायावादी में अंतर होता है। ब्रह्मवादी वो व्यक्ति है जो भगवान के निराकार स्वरूप से आकर्षित होता है, उस निराकार स्वरूप की उपासना करता है, ब्रह्म तेज के वो जो प्रकाश से बड़ा, उसके उसके चमक से बड़ा आकर्षित होता है। मायावादी वो है जिसके हृदय में भगवान के प्रति ईर्ष्या होती है, और जो सोचता है कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूं, मैं भगवान में लीन होना चाहता हूं। भगवान का कोई आध्यात्मिक स्वरूप नहीं है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो ये भौतिक शरीर होता है, इसलिए उनको मायावादी कहते हैं। जो समझते हैं कि भगवान का शरीर माया का शरीर है, उनको मायावादी कहते हैं। अक्सर कभी कभी भक्त लोग गलत समझते हैं कि जब कोई व्यक्ति माया में होता है तो वो मायावादी है, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान का शरीर माया का बना हुआ है, ऐसे लोगों को मायावादी कहते हैं। तो जार कुमार जो थे, उनके हृदय में ईर्ष्या नहीं थी भगवान के प्रति, और वो जानते भी थे भगवान के रूप के बारे में, लेकिन श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका साक्षात्कार नहीं था, इसलिए वो अपने निराकार उपासना में ही मग्न थे। लेकिन अब जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको साक्षात दर्शन दिया, तो उनका हृदय बदल गया और उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न हुई। तो ऐसे हम कई घटनाएं देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी, जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, और अन्य ग्रंथों में ऐसे भक्तों का वर्णन भी है, जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर, जो पहले ब्रह्मवादी थे लेकिन बाद में भगवान की कृपा प्राप्त करके वो भगवान के भक्त बने। आध्यात्मिक क्षेत्र में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक हैं जो भगवान के साकार स्वरूप की उपासना करते हैं, और दूसरे हैं जो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करते हैं। अनादि काल से ये दो वर्ग हैं, तो ये अलग अलग अपनी उपासना करते हैं। जो साकारवादी हैं, वो भगवान के भक्त होते हैं, वो समझते हैं कि भगवान व्यक्ति हैं, उनका रूप होता है, उनका आकार होता है। और जो निराकारवादी हैं, वो ज्ञानी होते हैं, वो केवल ज्ञान योग के माध्यम से भगवान में लीन होना चाहते हैं या निराकार ब्रह्म की उपासना करना चाहते हैं। ये जो तर्क है दोनों के बीच में, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। इसलिए हम जब भक्ति मार्ग में आगे चल रहे हैं, तो हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से ये जानना चाहिए कि भगवान कौन है, भगवान क्या है, क्या भगवान निराकार हैं, भगवान साकार हैं, और क्यों हम ऐसा कहते हैं। जो निराकारवादी हैं, वो कहते हैं कि देखिए, यहां जो भी हम रूप संसार में देखते हैं, वो सब सीमित हैं, सही है, और अगर भगवान का रूप है तो वो भी भौतिक होना चाहिए, ये संसार के रूपों की तरह होना चाहिए, इसलिए उनका भी रूप सीमित होना चाहिए। लेकिन भगवान कैसे सीमित हो सकते हैं? इसका मतलब है कि भगवान का रूप नहीं है। ये निराकारवादियों की धारणा है, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्योंकि हमारा अनुभव ये संसार में भौतिक रूप से है, तो भगवान का भी रूप ऐसे ही होना चाहिए, और इसलिए भगवान का रूप सीमित होगा, और भगवान सीमित कैसे हो सकते हैं, इसलिए भगवान का रूप ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो ये इनकी धारणा है। तो इस धारणा के विरोध हमें करना चाहिए। ये भक्ति मार्ग में आने से हम अवश्य भगवान की भक्ति तो करते हैं, प्रेममयी सेवा तो करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये स्पष्ट रूप से ज्ञान भी होना चाहिए भगवान के बारे में। इस तत्व का विज्ञान, ज्ञान हमें होना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हम भक्ति मार्ग से कहीं भटक न जाएं। तो ऐसे निराकारवादियों की धारणा का विरोध हम भक्ति मार्ग वाले कैसे कर सकते हैं? आचार्यों ने और स्वयं भगवान ने हमें बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो आज थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स या तर्क हम चर्चा करते हैं, ताकि अगर आपको कोई ऐसे सड़क में पकड़े कि आप गीता पढ़ते हो, आप मंदिर में जाते हो, हा? अब ये बताइए कि आप निराकार की उपासना क्यों करते हो, आप अर्च विग्रह की पूजा क्यों करते हो, भगवान का कोई रूप नहीं है, तो आपको जवाब देने के लिए साथ में कोई तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो आइए बहुत सरल ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान साकार है या निराकार है या क्या है। तो इनका सबसे पहला विरोध हम ऐसा कर सकते हैं इस तर्क से। एक छोटे बच्चे को हमने मायापुर ने पूछा कि भगवान साकार है या निराकार है, वो कहने लगा कि भगवान का रूप है। तो हमने पूछा कि आप ये क्यों कहते हो कि भगवान का रूप है, तो बच्चा कहने लगा जब मेरा रूप है, आपका रूप है, तो भगवान का क्यों नहीं हो सकता, भगवान का भी होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर जवाब दिया छोटे से बालक ने। ये इसके पीछे, ये सरल एक साधारण वाक्य के पीछे एक बहुत गहरा तत्व है। वो तत्व क्या है कि भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णम पूर्णम पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि भगवान पूर्ण है। पूर्ण का मतलब है कि उनके अंदर सब कुछ है, हम तो उनके अंश हैं। अंश के अंदर जो भी गुण हैं, जो भी लक्षण हैं, वो पूर्ण के अंदर तो होने ही चाहिए ना। अगर अंश में कोई गुण है, ये कैसे संभव है कि पूर्ण में नहीं हो सकते हैं? पूर्ण में तो होने ही चाहिए। पूर्ण में नहीं होते तो अंश में आए कैसे? तो भगवान के अंदर सब कुछ है, जो हम यहां अनुभव करते हैं वो सारे चीजें हैं, और हमारे अनुभव के बाहर जो चीजें हैं वो भी भगवान के अंदर हैं। हमारे अनुभव में हम ऐसे कई चीजें देखते हैं जिनका कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है। जैसे हवा है, हवा का कोई आकार नहीं है। तो ये निराकार तत्व ये भगवान के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब भगवान निराकार है, मंजूर है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ये हमारा रूप है, ये माइक्रोफोन का रूप है, पंखे का रूप है, आकार है, इसका मतलब भगवान का भी रूप और आकार होना चाहिए। तो भगवान क्योंकि पूर्ण है, उनके अंदर रूप भी है और निराकार स्वरूप भी है, दोनों एक साथ हैं, क्योंकि वो पूर्ण है। अगर हम कहेंगे कि भगवान केवल निराकार है तो ये ठीक नहीं है। इसका मतलब है कि भगवान के अंदर कोई कमी है, कोई अपूर्णता है, लेकिन ये नहीं है। भगवान तो पूर्ण है, परम सत्य है। इसलिए हमें मंजूर करना ही होगा कि भगवान साकार भी है, निराकार भी है, दोनों एक साथ में है। अगर केवल साकार होते या केवल निराकार होते तो वो परम सत्य पूर्ण भगवान नहीं हो सकते। इसलिए भगवान का मतलब है दोनों एक साथ में होना, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, एक साथ में भगवान साकार और निराकार है। तो यह पहली बात है, हमें समझना है कि क्योंकि भगवान पूर्ण है इसलिए भगवान में दोनों गुण हैं, साकार और निराकार। दूसरी बात, वो लोग कह सकते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान निराकार और साकार अवश्य हैं, लेकिन हमारा कहना है कि निराकार ब्रह्म सब कुछ है, ये बुनियाद है, और निराकार ब्रह्म से सब कुछ उत्पन्न होता है। जो भगवान के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग अवतार हैं, वो सब निराकार से उत्पन्न होते हैं। तो इसके लिए हम क्या जवाब दे सकते हैं? हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जवाब देते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नम मन्यते माम अबुद्धयः। वो कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिम, वो कहते हैं कि अव्यक्त से जब मैं व्यक्ति बना हूं, ये जो मानते हैं वो क्या है, अबुद्धयः, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम, वो नहीं जानते हैं कि मेरा परम भाव क्या है, मैं ये जड़ प्रकृति से नहीं बना हूं, मेरा भाव कैसा है, परम भावम। लेकिन ये नहीं जानते हैं अजानंतो मम अव्ययम, मैं अव्यय हूं, अनुत्तमम, सूक्ष्म हूं बिल्कुल। इनकी बुद्धि ऐसी सूक्ष्मता को पहचान नहीं सकती है, इसलिए अबुद्धयः, ये सोचते हैं कि क्या अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नः, आपन्नः मतलब परिवर्तन होता है, वो सोचते हैं कि निराकार अव्यक्त रूप से एक व्यक्ति के रूप में मेरा परिवर्तन हुआ है जब मैं अवतार लेता हूं। नोट कीजिएगा, यहां भगवान अव्यक्तम व्यक्तम नहीं कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम कहते हैं, व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति। इसका मतलब है कि भगवान पहले से व्यक्ति है और उनसे आता है, ऐसा नहीं है कि भगवान अव्यक्त है और अव्यक्त से भगवान व्यक्ति आते हैं, ऐसा नहीं है। गीता में 14वें अध्याय में भी भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, कि मैं ही निराकार ब्रह्म का बुनियाद हूं, आधार हूं, मुझसे ही निराकार ब्रह्म आता है। जिस प्रकार से सूरज से रोशनी आती है, सूरज का आकार है, एक रूप है, आप देख सकते हैं आकाश में, सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय खास करके आप देखिए, सुंदर आकार लगता है सूरज का। लेकिन क्या सूरज के किरणों का आकार होता है, सूरज के किरणों का रूप होता है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? हाँ, दोनों सूरज और सूरज की किरणें एक साथ में रहते हैं, सूरज के बिना सूरज की किरणें नहीं हो सकती हैं, और अगर सूरज की किरणें नहीं होती तो सूरज का मतलब क्या है? तो दोनों का अस्तित्व एक साथ में होता है, लेकिन फिर भी सूरज में और सूरज के किरणों में श्रेष्ठ कौन सा है, आप क्या बताएंगे? सूरज। क्यों? क्योंकि सूरज से सूरज की किरणें उत्पन्न होती हैं, सूरज उगम स्थान है, इसीलिए सूरज का ज्यादा महत्व है। ठीक उसी प्रकार से भगवान साकार और निराकार एक साथ में हैं, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान का साकार रूप। क्यों? क्योंकि साकार से निराकार उत्पन्न होता है। देखिए कितनी सरल बात है, इसमें संस्कृत पंडित होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बड़ा कोई पंडित या ज्ञानी होने की आवश्यकता नहीं है, साधारण बात है, कोई भी समझ सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों से हमें उनको जवाब देना चाहिए। और एक बात, वो कहते हैं कि ठीक है, जब भगवान का ऐसे अवतार होता है तो ये भी अवतार भगवान का भौतिक होना चाहिए, ये मायावाद दर्शन है। लेकिन इस बात का खंडन भी भगवान गीता में करते हैं, भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम्। वो कहते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, ये संसार में कई मूर्ख लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं, मेरा शरीर भौतिक चीजों से बना हुआ है, लेकिन मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते कि मेरा शरीर दिव्य शरीर है, चिन्मय है मेरा शरीर, इस सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए गलत नतीजे पे पहुंचते हैं कि मेरा शरीर भी उन्हीं के शरीर की तरह है। तो इस प्रकार से हम इनके धारणाओं का खंडन या उनका विरोध हम कर सकते हैं। और एक बात है, जो मायावादिक रूप, लेकिन आध्यात्मिक जगत के अंदर आध्यात्मिक रूप भी होता है, चिन्मय रूप, सच्चिदानंद रूप। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो बताते हैं कि परम ईश्वर हैं श्री कृष्ण और सच्चिदानंद विग्रह उनका रूप है, उनका विग्रह है। और इस विग्रह का क्या लक्षण है, इसके क्या गुण हैं? सच्चिदानंद, सत चित और आनंद। जड़ पदार्थों का बना हुआ नहीं है उनका शरीर, चिन्मय शरीर है, कभी न नाश होने वाला शरीर, स्वयं प्रकाशमान शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, यह है भगवान का दिव्य शरीर। और ऐसे शरीर को हमें साधारण शरीर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये अनंत है। जो निराकारवादी कहते हैं कि अगर रूप है तो उसे सीमित होना चाहिए, लेकिन भगवान का जो आध्यात्मिक रूप है वो अनंत है। अद्वैतमच्युतम अनादिमनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। भगवान बताते, ब्रह्मा जी बताते हैं, क्या बताते हैं? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के का रूप अनंत है, उनके रूप भी अनंत हैं और उनका एक एक प्रत्येक रूप भी अनंत है। यह समझना आवश्यक है। भगवान अपने आप को विस्तार कर सकते हैं अनंत रूपों में। जैसे श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं, कोई बता सकते हैं कितने अवतार हैं? कितने संख्या बोलिए, नंबर बोलिए। 108, 10, और आप क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी, काउंटलेस, अनगिनत है। जितने सागर में लहरें होते हैं उतने भगवान के अवतार हैं। आपने कभी यहां जुहू बीच पर जाकर लहरों को गिनने का प्रयास किया है? कीजिएगा मत, लेकिन अगर किसी ने किया हो तो आप घंटों घंटों बैठ जाएंगे, लेकिन अनंत है, आप गिन नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से भगवान के अवतार अनंत हैं। तो एक श्री कृष्ण भगवान ने अपने आप को अनंत रूपों में विस्तार कर दिया है, और वही एक भगवान का रूप जो है वो भी भगवान उसके अपने आप को छोटा बड़ा जितना चाहे उतना कर सकते हैं। बड़े से बड़ा कर उन्होंने अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन दिया। इतना भयंकर दर्शन कि अर्जुन ने कहा, कृपा करके अभी दर्शन बंद कर दीजिए, अभी हम इसको सहन नहीं कर सकेंगे। और छोटा करते हैं तो इतना छोटा कि अणु के भीतर में भी प्रवेश कर लेते हैं। अंडंत अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, एक अणु परमाणु के भीतर भी प्रवेश कर लेते हैं। तो भगवान अपने एक ही रूप को इतना विस्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो आदमी थोड़ा हाइट में कम है सोचता है कि मैं लंबा होना चाहता हूं, जितना भी अपने आप को ऊंचा करे क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जो आदमी थोड़ा पतला है हमारे जैसा, अगर सोचे कि मैं थोड़ा मोटा होना चाहता हूं, जितना भी अपने शरीर को फुलाए मोटा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा है, दिव्य है। भगवान जब चाहे अपने शरीर को ऊंचा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने शरीर के साथ में। एक ही क्षण में अनंत कोटि रूपों का विस्तार कर सकते हैं। इसमें भगवान के लिए कोई कठिनाई नहीं है। यह है तात्पर्य अनंत रूपम शब्द का। तो जो निराकारवादी हैं उन्हें हम ये बात समझाना चाहिए कि भगवान का रूप है, लेकिन इस प्रकार से दिव्य शरीर होते हुए उनका रूप अनंत है। इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है जो श्रीमद् भागवत में आती है कि नारद मुनि वो एक बार कृष्ण भगवान का दर्शन करने गए द्वारकापुरी में। जब वो वहां गए तो पहले महल में गए, वहां जाकर देखा कि कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ में बैठे हैं और प्रसाद सेवन कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि द्वारका में श्री कृष्ण के कितने रानियां थी, पटरानियां? 16108। तो भगवान श्री कृष्ण ने हरेक पठराने के लिए क्या किया था, हर एक अलग अलग महल बनाया था। तो नारद मुनि जब पहले महल में गए तो यहां श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ में प्रसाद सेवन कर रहे थे। दूसरे महल में गए तो श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ में शतरंज खेल रहे थे। तीसरे महल में गए तो श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ में बैठकर यज्ञ कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा चल रहा था। चौथे महल में गए तो श्री कृष्ण सत्या के साथ में ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। इस प्रकार से नारद मुनि एक महल से दूसरे महल, दूसरे से तीसरे, इस प्रकार से 16108 महलों में एक के बाद एक गए और क्या देखा कि हरेक महल में वही श्री कृष्ण अपने अलग अलग रानियों के साथ में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। और नारद मुनि जी वो तो सब कुछ जानते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, फिर भी उनका सर चकरा गया। जब अष्टांग योग में कोई आगे बढ़ जाता है तो ऐसे सिद्धि प्राप्त करने के फल स्वरूप योगी अपने शरीर को 8 रूपों में विस्तार कर सकता है या कभी कभी 9 रूपों में भी कर सकता है। लेकिन ये प्रत्येक रूप जो होता है वो टेलीविजन के ऊपर दिखने वाले पिक्चर की तरह होता है। अब आप जानते हैं कि आपके टेलीविजन, आशा करते हैं कि आप नहीं देखते हैं टेलीविजन, लेकिन फिर भी भक्ति में आने के पहले आपने देखा होगा इसलिए हम बोल रहे हैं। तो टेलीविजन में जब आप कोई चित्र देखते हैं तो आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं वो वास्तव में टीवी के डब्बे में नहीं बैठा है, लेकिन कहां बैठा है, स्टूडियो में। स्टूडियो में बैठकर वो कुछ कह रहा है, कुछ इशारे कर रहा है, और जैसे वो बात कर रहा है या इशारे कर रहा है वैसे के वैसे हजारों की संख्या में जो अलग अलग टीवी सेट हैं वैसे के वैसे वो टीवी सेट में नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके टीवी सेट में आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति खा रहा है और आपके पड़ोसी के टीवी सेट में आप देख रहे हैं कि वो कुछ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। आपके टीवी सेट में जो दिखाई पड़ रहा है वो पड़ोसी के टीवी सेट में भी वही चीज दिखाई पड़ेगी। तो प्रत्येक टीवी सेट में वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो मूल व्यक्ति है जो टीवी स्टेशन में स्टूडियो में बैठा हुआ है वो एक ही कार्य कर रहा है। तो योगी लोग जब अपने आप को 8 या 9 रूपों में विस्तार कर लेते हैं तो जैसा वो योगी करता है वैसे उसके 8 रूप करेंगे। अगर योगी ने हाथ ऊपर कर लिया तो सारे 9 रूप भी हाथ ऊपर करेंगे। अगर योगी ने आंखों में हाथ रख लिया तो सारे 9 रूप आंखों में हाथ रखेंगे। योगी कुछ खाने लग गया तो सारे 9 रूप कुछ खाने लग जाएंगे। तो उसी प्रकार से योगी के रूप होते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण योगी नहीं है, योगेश्वर हैं। योगियों के भी वो ईश्वर हैं। इसलिए भगवान ने जब अपने आप को 16108 रूपों में विस्तार कर लिया तो उनका प्रत्येक जो विस्तारित रूप था वो अलग अलग कार्य कर रहा था। योगियों की तरह नहीं, जैसे हरेक रूप एक ही कार्य कर रहा था, हरेक रूप अलग अलग कार्य। ये है भगवान की विचित्र अद्भुत शक्ति, योग शक्ति, जिसका नकल हम नहीं कर सकते हैं, जिसकी तुलना भी किसी से नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान का रूप का क्या मतलब है, अनंत रूप का क्या मतलब है। तो इस प्रकार से हम निराकारवादियों का विरोध कर सकते हैं। हम और एक तर्क कर सकते हैं। वैसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करने जाएं तो आपके प्रसाद का समय बीत जाएगा, इसलिए हम यहां मंदिर में रूपों की संख्या कम करना नहीं चाहते हैं, इसलिए और एक दो तर्क हम पेश करते हैं। एक ये है कि गीता में भगवान कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपिमाम। भगवान बताते हैं कि अलग अलग प्रकार की उपासना करने से हमें अलग अलग गति की प्राप्ति होती है। जन साधारण की धारणा है कि आप जिसकी उपासना भी क्यों न करें, एक ही गति को आप प्राप्त करेंगे, है ना। सब बोलते हैं आप गणेश की पूजा कीजिए, दुर्गा की पूजा कीजिए, ये बाबा की पूजा कीजिए, हमारी पूजा कीजिए, आप वही एक ही स्थान तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि कृष्ण भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि जैसे जैसे आपकी अलग उपासना है, वैसे वैसे आपको अलग गति की प्राप्ति होगी। तो भगवान बताते हैं यान्ति देव वृता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के लोक में जाते हैं। पितृन यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। भूतानि, जो भूत प्रेत पिशाचों की पूजा करते हैं वो उनके लोक में जाते हैं, भूत लोक, प्रेत लोक, पिशाच लोक में जाते हैं। और भगवान बताते हैं यान्ति मद याजिनोपिमाम, कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरी उपासना करता है, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जिस प्रकार से देवताओं के देवता हैं, पितृ हैं, ये अलग अलग भूत प्रेत पिशाच हैं और उनके अलग अलग लोक भी हैं, उसी प्रकार से कृष्ण हैं और कृष्ण का धाम भी है। ये सब अलग अलग चीजें हैं और जैसे देवताओं की उपासना करने से आप देवता लोक में जाएंगे, कृष्ण की उपासना करने से कृष्ण के लोक में जाएंगे। ये देवतागण तो कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, ये भूत प्रेत पिशाच कोई काल्पनिक नहीं है, आशा करते हैं आपने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन काल्पनिक तो नहीं है, ये सत्य है। तो उसी प्रकार से जब कृष्ण के सच सत्य है, उनका धाम सत्य है, तो निराकार की बात कहां आती है। तो भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उनका धाम है, वो उनका धाम है। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः, यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कहते हैं कि इस जड़ प्रकृति के परे एक धाम है, हे अर्जुन, जो मेरा धाम है। जब ये इस भौतिक सृष्टि का नाश हो जाता है तो मेरे उस धाम का नाश नहीं होता है, और वहां सूरज की आवश्यकता नहीं है, श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, वहां सूरज, चांद, बिजली, अग्नि की कोई आवश्यकता नहीं है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कि वहां जब कोई जाता है तो लौटकर नहीं आना पड़ता है, क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं उसने मेरे धाम को प्राप्त कर लिया है, वो मेरा घर है, हम भगवान के घर में जाना चाहते हैं। और भगवान निमंत्रण दे रहे हैं, घर होता है तो घर में रहने वाला भी कोई होता है ना, इतने सारे सोसाइटी हैं, खरीदने वाला तो कोई है ना। हाँ, आजकल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन रहने वाला तो कोई होता है ना। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण का धाम है, कृष्ण भी है तो कृष्ण का रूप भी है, ये सारे चीजें सत्य है। और एक तर्क हम दे सकते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौते ये जगत पे परिवर्तते। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि इस प्रकृति जो है मेरे अध्यक्षता के अनुसार चल रहा है, मैं प्रकृति का स्वामी हूं और सब कुछ मेरे निर्देशन में चल रहा है। अर्थात भगवान नियंत्रण करता है, कंट्रोलर है। अब जब कोई नियंत्रण करता है उसका मतलब है कि वो व्यक्ति है। जैसे बिजली का घर है जहां से बिजली का उत्पादन होता है, बिजली तो यूं ही नहीं चले आता है आपके पास, बिजली घर को चलाने वाला भी कोई इंजीनियर चाहिए। अगर कोई इंजीनियर नहीं होता तो बिजली घर से बिजली नहीं निकल सकती। तो बिजली निकलती है, बिजली घर है, इसका मतलब है बिजली घर को चलाने वाला कोई व्यक्ति है। उसी प्रकार से ये भौतिक सृष्टि है ये एक यंत्र के समान है और यंत्र के पीछे भी एक व्यक्ति है, व्यक्ति को होना चाहिए। आपका अनुभव क्या ऐसे है कि किसी यंत्र के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई यंत्र के बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? अगर हम आपको ये करताल दें, माइक्रोफोन दें और कहें कि बस हम चल रहे थे, अचानक हमारे आंखों के सामने रास्ते पे थोड़े मिट्टी एकत्र होकर माइक्रोफोन बन गया, तो आप क्या इस बात को विश्वास करेंगे? आप कहेंगे नहीं, इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है जिसकी बुद्धि है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक सृष्टि को बनाने वाला भी कोई व्यक्ति है। व्यक्ति मतलब रूप, आकार। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, उनका भी कोई रूप है। तो ऐसे अलग अलग और भी कितने सारे तर्क दे सकते हैं। हमारे आचार्य ने तो ऐसे कितने गणना में तर्क दिए हैं। थोड़े बहुत हम जान लें तो हमारे श्रद्धा के लिए अच्छा रहेगा। और जैसे लोग हमारा सामना करेंगे हमें चैलेंज करने के लिए, तो हम उनको नम्रता से ये चीजें प्रस्तुत कर सकते हैं कि हाँ, हमने गीता क्लास में, भागवत क्लास में ये सीखा है। तो हम यहाँ पर मंदिर में क्यों आते हैं? कुछ सीखने के लिए आते हैं, हृदय का शुद्धिकरण करने आते हैं, हमारे श्रद्धा को बढ़ाने आते हैं। लेकिन बाहर जाएं तो बाहर वालों का काम क्या है? जो आपने सीखा है उसका उल्टा करने के लिए वो कोशिश करते हैं, आपकी श्रद्धा को तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं, आपके हृदय में संशय संदेह डालने के लिए कोशिश करते हैं। और ऐसे लोग आपके मित्र और रिश्तेदार के नाम से जाने जाते हैं, है ना? आपके मित्र रिश्तेदार ही आपके वास्तव में शत्रु हैं, जो आपकी श्रद्धा कम करना चाहते हैं। अरे क्यों मंदिर में इतना जाते हो? थोड़ा बहुत जाओ, कभी हफ्ते में एक बार, कभी महीने में एक बार जाओ, करो भक्ति। नहीं नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ सीमा में करना, बुढ़ापे में करो। हाँ, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ये सब चीजों का श्रवण करना, इनको अच्छी तरह से जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने ऐसे सब क्यों लिखा होता? नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 700 श्लोक क्यों बोले होते? केवल एक श्लोक कह दिया होता कि अर्जुन युद्ध करो। लेकिन अर्जुन को अच्छे ढंग से समझाने के लिए, उसकी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए, उसे आध्यात्मिक जीवन में परिपक्वता लाने के लिए भगवान ने इतना बड़ा प्रवचन दिया। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथ लिखे हैं हमारे लिए पढ़ने के लिए, समझने के लिए, श्रवण करके इनका चिंतन मनन करके इनका पचन करने के लिए। और इस प्रकार से जब हम दूसरों को इस बात का प्रचार करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे। भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। हमें अपना जीवन सार्थक करना है और फिर ये ज्ञान दूसरों को देकर उनका भी जीवन हमें सफल बनाना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो तार ऐ देश। जिसे भी आप मिलो कृष्ण का उपदेश दे दो, और इस प्रकार से आप सबको ये भव सागर से आप तार कराओ, तैर करके पार करा दो। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश हम सब के लिए। तो इसलिए यहाँ पर कथा क्लास में आकर हमें ध्यान से सुनना चाहिए। नींद आती है तो अपने आप को अच्छी तरह से बिठाना चाहिए। टीवी देखते समय, सिनेमा देखते समय किसी को नींद नहीं आती है, क्योंकि रुचि रहती है। उसी प्रकार से रुचि जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग में आकर जो भी हम सीखते हैं जाकर घर में बता देना चाहिए। आपके जो भी मित्र रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जाके बोलिए आज हमने क्लास में ये सुन लिया। जब हम किसी दूसरे को बोलते हैं, हम सिखाते हैं, तो ये खुद एक सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है। आपको अच्छी तरह से किसी चीज को सीखना है तो दूसरों को सिखाइए, क्योंकि अगर दूसरों को सिखाना होगा तो आपको पहले अच्छी तरह से सीखना होगा। इसलिए इसके ध्यान से सीखिएगा और फिर दूसरों को बोलिए। इस प्रकार से आप करते रहेंगे ऐसे, ज्यादा से ज्यादा सत्संग में आते रहेंगे तो आपकी श्रद्धा निष्ठा बढ़ जाएगी। और जिस प्रकार से चार कुमारों का साक्षात्कार हुआ, वैसे भी हम सब का साक्षात्कार हो सकता है। और हमारे पूजनीय आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आराध्य भगवान व्रजेश तनयस्तर धाम वृंदावनम, ये व्रजेश तनय श्याम सुंदर गोविंद श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रीति या प्रेम जागृत हो सकता है। और इसको जागृत करने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम हमेशा भगवान उनका पवित्र नाम का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सब अब दृढ़ विश्वास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति हैं, उनका निराकार स्वरूप है, लेकिन वो उनका शरीर का तेज है। अंततः भगवान श्री कृष्ण एक दिव्य व्यक्ति हैं और हमारे आराध्य भगवान हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।
तो अभी यह सिद्धांत है, वो भी ये क्या शास्त्रों से ही पढ़ते हैं या उनका मन घड़ित है?
ये अच्छा प्रश्न है। वेद है ना, ये एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जहां आप जो भी इच्छा करें आप प्राप्त करेंगे। तो वेद भी वैसे हैं। हर प्रकार की इच्छा वेदों से पूर्ण हो सकती है। अगर आपको साक्षात श्री हरि का भक्त बनना है तो ऐसे भी ग्रंथ आपके लिए हैं, जैसे गीता है, भागवत है। लेकिन अगर आपको ऐसे चाहिए ग्रंथ जिनमें ज्यादा निराकार की उपासना की ओर आपका ध्यान बढ़ाया जाएगा तो आपके लिए ऐसे भी ग्रंथ हैं। लेकिन उपनिषदों में जो भी ऐसे निराकार ब्रह्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, उनका अंतिम उद्देश्य भी यही है कि वो आखिर में अंततः उस योगी को भगवान के चरण कमलों तक वो ले आए। तो वास्तव में अगर देखा जाए, अगर सारे शास्त्रों को ऊपरी दृष्टि से देखा जाए तो सारे अन्य जो भी ग्रंथ हैं वो धीरे धीरे से गीता और भागवत की ओर इशारा करते हैं। उपनिषदों में जो ज्ञान दिया गया है उसका ज्यादा विस्तार में भागवत में दिया गया है, और गीता जो है ये सारे उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो सुधीर भोक्ता, ये सारे उपनिषद गाय के समान हैं। और जो गीता है वो क्या है? दूध है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा, दोग्धा कौन है? जो गाय से दूध निकालने वाले गोपाल नंदनः। और वत्स कौन है गाय पीने वाले और दूध पीने वाले? पार्थ सुधीर भोक्ता। तो इस प्रकार से गीता सारे उपनिषदों का सार है, और गीता में भगवान बताते हैं अव्यक्तम व्यक्तिम आपन्नः मन्यते माम अबुद्धयः। इसलिए हम गीता का पाठ करते हैं और गीता भागवत ये दो ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए काफी है। और इन दो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान एक व्यक्ति हैं और उनकी प्रेममयी सेवा हमें करनी चाहिए। हरे कृष्णा।
आपने बताया कि वैकुंठ में या गोलोक में प्रवेश करने के लिए शुद्ध सत्वगुण में स्थित व्यक्ति ही जा पाता है। सेकंड, उसमें बिल्कुल भी कलमश नहीं रहता, एक बात। दूसरी तरफ इससे पहले दूसरे स्कंद के अंतिम कुछ श्लोकों में, अंतिम मतलब उसके अंतिम कुछ पाठों में, और जय विजय का भी आपने एक उदाहरण दिया था, तो ये कैसे संभव हुआ कि उन्होंने पहले द्वारपाल के रूप में किसी को रोका, जैसे श्रीमती राधा रानी को, उसी समय उनका तेज खत्म हो गया। तो मेरा प्रश्न है कि वहां पर जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कलमश शांत करके शुद्ध सतोगुण में स्थित होकर वहां पहुंचता है, क्या ऐसा व्यक्ति से कोई इस प्रकार की गलती की उत्पन्नता भी हो सकती
है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब है नहीं। तो आप पूछेंगे कि लेकिन हुआ, ये भी सही है हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, क्योंकि भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाहते थे। उन्होंने फाइटिंग बहुत लंबे समय से नहीं किया था, कहते कि कुछ युद्ध करूं, लेकिन युद्ध करूं तो किसके साथ में करूं, युद्ध करने लायक कोई ऐसा प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए जो सामना कर सके, और ये संसार में छोटे छोटे असुर हैं, उनका उनसे काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पार्षद हैं, हमारे साथी हैं, वही जाकर बड़े असुर बनेंगे, तब कुछ बात होगी, तब कुछ मजा आएगा युद्ध में।
इसके लिए उन्होंने जय विजय में विकार उत्पन्न किए,
बिल्कुल, इसलिए उन्होंने अंदर से उनको प्रेरित किया ऐसे उनको रोकने के लिए चार कुमारों को, और उन्हीं ने चार कुमारों के हृदय से उनको प्रेरित किया जय विजय को श्राप देने के लिए, और इस प्रकार से ये लीला हुई जिससे हम प्रह्लाद की कथा सुनते हैं। ठीक है,
हरे कृष्णा, बहुत बहुत।